पृष्ठ संख्या 250, अध्याय 15। अध्याय शीर्षक है बिंदु घ, धार्मिक भाषा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस लैंग्वेज। शीर्षक है भूमिका। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं होती हैं। इस आधुनिक युग की विशेषता है वैज्ञानिकता। हम किसी भी चिंतन और कार्य को वैज्ञानिक ढंग से ही संपादित और संपुष्ट करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारी विचारधाराएं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों पर आधारित है। कारण यह है कि जीवन के अनेकानेक क्षेत्रों में विज्ञान की सफलताओं ने हममें यह विश्वास भर दिया है कि वैज्ञानिक प्रणाली के ग्रहण से ही जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। धर्म के क्षेत्र में नवीनतम प्रवृत्ति वैज्ञानिक प्रवृत्ति का ही परिणाम है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप ही धर्म को या तो लोगों ने बाधा के रूप में देखा है, क्योंकि धर्म में वह शक्ति नहीं है कि वह सच्चाई का वैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शन कर सके, या फिर धर्म एक क्रीड़ा है जिसका अभ्यास चाहे जिस रूप में किया जाए जो कि मानव की मूल प्रवृत्ति को संतुष्टि प्रदान कर सके। इतना तो निर्विवाद सत्य है कि धर्म की बाधा समझने वाले भी धर्म से अपना पीछा छुड़ा सकने में समर्थ नहीं हुए हैं। रही बात इसके अध्ययन करने की विधियों के विषय में, धर्म का संबंध दर्शन से अत्यधिक निकट का है, परंतु दर्शन विज्ञान के चंगुल से न बच सका। अनुभववाद दर्शन की एक ऐसी शाखा है जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति को लेकर ही ह्यूम के दर्शन में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। इसके अनुसार प्रत्येक ज्ञान का आधार अनुभव की कसौटी को माना गया है। इस कसौटी का प्रतिफल यह हुआ कि जिस तथ्यात्मक वाक्य या अनुभव में आने वाले प्रत्यय का आधार संवेदन न हो, वह वाक्य और प्रत्यय सार्थक न होगा। इस आधार पर तो ह्यूम ने द्रव्य और कार्य कारण को भी अर्थपूर्ण नहीं माना। ह्यूम की इसी विचारधारा का फल समकालीन दर्शन में तर्कमूलक भाववाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आया। इस सिद्धांत ने तत्व ज्ञान का प्रत्याख्यान तो किया ही, धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने पर देखा कि धर्म के विषय भी उसके सिद्धांत के अनुसार ग्रहणीय नहीं है। इस मत का केंद्र बिंदु भाषा विश्लेषण कहा जाता है। दार्शनिक और धार्मिक कथनों का भाषागत विश्लेषण करना इनका प्रमुख लक्ष्य होगा। धर्म के साथ खेल करने का इनका एक अनोखा ढंग है, जिसका माध्यम इन्होंने भाषा विश्लेषण को ही चुना। इस मत का प्रतिपादन मॉरिस स्लिक के नेतृत्व में वियना ग्रुप के दार्शनिकों ने किया। आगे चलकर इसका विकास विटग्रेनस्टाइन, रसेल, रडॉल्फ, कार्नैप, एजे एयर आदि अन्य दार्शनिकों की कृतियों में देखा जाता है। इस संप्रदाय के दार्शनिक चिंतकों में वैज्ञानिक चिंतन का ही प्राबल्य रहा। इनकी चिंतन धारा का मुख्य सूत्र सत्यापन का सिद्धांत है। इनके अनुसार कोई भी प्रकथन या प्रोपोजिशन उसी अवस्था में सार्थक है जब वह या तो गणित की भांति विश्लेषणीय हो या किसी सामान्य धारणा की भांति अनुभवात्मक पद्धति से सत्यापित हो। पृष्ठ संख्या 251। इनकी दृष्टि में सार्वभौम सत्यों को वैज्ञानिक प्रणाली से ज्ञात करने का यह एक सबल आग्रह है। फलस्वरूप दर्शन के विभिन्न क्षेत्रों में एक अस्पष्ट, यथार्थ, सरल और अर्थपूर्ण भाषा पद्धति की मांग हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि दर्शन में भाषा विश्लेषण, अधिनीति शास्त्र, अधिगणित शास्त्र और अधितर्क शास्त्र आदि की नई समस्याएं उपस्थित हुई। चूंकि धर्म दर्शन का अभिन्न अंग है, इसलिए धर्म की भाषा विश्लेषण की इस नवीनतम पद्धति से छूट न सका। अगला शीर्षक है धार्मिक भाषा की समस्या। इन समकालीन दार्शनिकों का ध्यान धर्म दर्शन की परंपरागत समस्याओं जैसे आत्मा, ईश्वर के तात्विक गुण, इनके अस्तित्व के तार्किक आधार क्या है आदि से हटकर धार्मिक भाषा की ओर गया। विश्व के प्रत्येक धर्म में भाषात्मक अभिव्यक्तियाँ होती हैं और उनकी अपनी विशिष्टता भी होती है। जब इन अभिव्यक्तियों का विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन प्रारंभ किया गया तो इनकी सार्थकता निरर्थकता का प्रश्न भी उठा। यही धार्मिक भाषा की समस्या के रूप में है। उदाहरणार्थ इस धार्मिक वाक्य को लें कि ईश्वर प्रेम है। इस वाक्य की व्याख्या तर्कमूलक भाववादियों की कसौटी पर संभव नहीं है, क्योंकि इसका सत्यापन नहीं किया जा सकता। ईश्वर प्रेम है, इस कथन की व्याख्या सत्यापन सिद्धांत के आधार पर उस प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार की यह मेज लाल है कि व्याख्या और सत्यापन संभव है। जिन वाक्यों का इंद्रिया अनुभव के द्वारा सत्यापन किया जा सकता है वे ही यथार्थ और अर्थपूर्ण भी हैं, या जिन वाक्यों का विश्लेषण किया जा सकता है वे यथार्थ हैं। यदि सत्यापन के सिद्धांत को वास्तविक ज्ञान की एक कसौटी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो धार्मिक प्रकथनों को निरर्थक तथा अर्थहीन सिद्ध किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आत्मा, अमरता, ईश्वर आदि प्रत्यय जो धर्म में पाए जाते हैं निरर्थक और अर्थहीन हैं, क्योंकि यह मेज लाल है की तरह धार्मिक कथनों की वास्तविकता, यथार्थता और अर्थपूर्णता इंद्रिय अनुभव के आधार पर नहीं सिद्ध की जा सकती। सारांश यह है कि तर्कमूलक भाववादियों ने धार्मिक भाषा की अर्थपूर्णता और सत्यता को अस्वीकार कर दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में जब सत्यापन सिद्धांत प्रचलित हुआ तब धार्मिक भाषा की अर्थपूर्णता को अस्वीकार किया गया, परंतु बाद में चलकर सत्यापन सिद्धांत वाद विवाद का विषय बन गया और फिर यह स्वीकार किया गया कि धार्मिक भाषा को सर्वथा निरर्थक नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट है कि यहाँ धार्मिक भाषा की समस्या का एक दूसरा रूप सामने आता है। धार्मिक भाषा का संबंध धार्मिक ज्ञान पर निर्भर करता है। हमें निर्विवाद रूप में यह स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए कि धर्म मानव संस्कृति का महान सत्य और तथ्य है। मानव जन्म के साथ ही साथ धर्म का जन्म स्वीकार करना पड़ता है। उसका प्रारंभिक रूप चाहे जैसा भी रहा हो, परंतु धर्म के सार्वभौमिक रूप को देखकर तो यही पता चलता है कि विश्व में धर्म ने मानव जाति तथा संस्कृति को जितना अधिक प्रभावित एवं परिचालित किया है, उतना किसी तत्व ने नहीं किया। पृष्ठ संख्या 252। उसे सदैव से किसी महान सत्ता का किसी न किसी रूप में ज्ञान रहा है, और उस सत्ता के विषय में मनुष्य के अनेक अभिकथन, उक्तियाँ एवं प्रार्थनाएं प्राप्त हुई हैं। इन कथनों और प्रार्थनाओं का मानव जाति के लिए एक अर्थ रहा है। इसीलिए इन कथनों का मनुष्य सार्थक ढंग से प्रयोग करता आ रहा है। यदि धार्मिक ज्ञान ज्ञान की कोट में न होते तो इनका प्रयोग और अर्थ मनुष्य एक दूसरे को समझाने और समझने के लिए न करता और न तो इससे संतुष्टि ही प्राप्त करता। अतः सिद्ध है कि धार्मिक ज्ञान एक ज्ञान है। यह प्रश्न दूसरा है कि क्या यह वैज्ञानिक ज्ञान कहा जा सकता है, और उसको भाषा में हम वैज्ञानिक ज्ञान के समवाक्यों की भांति समझ सकते हैं। उत्तर स्पष्ट है कि धार्मिक ज्ञान को हम वैज्ञानिक ज्ञान नहीं कह सकते। इसका अपना विशिष्ट और अनोखा रूप है। वैज्ञानिक ज्ञान को जब हम भाषा में प्रकट करते हैं तो उसका रूप अनुभवात्मक समवाक्यों के आकार का होता है। ऐसे वाक्यों को संज्ञानात्मक वाक्य कहते हैं, और जब धार्मिक वाक्यों को भाषा में प्रकट करते हैं तो उसका रूप असंज्ञानात्मक होता है। अगला शीर्षक है संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक वाक्य। संज्ञानात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में सूचना प्राप्त होती है। ऐसे वाक्य वर्णनात्मक होते हैं, जैसे मेज लाल है। असंज्ञानात्मक कथन उसे कहते हैं जिनसे किसी वस्तु या घटना के विषय में हमें सूचना प्राप्त होती है। ऐसे प्रकथनों के अंतर्गत आज्ञा सूचक, अनुप्रेरक या संवेग परक कथन आ सकते हैं। यद्यपि यह विवाद का विषय हो गया है कि धार्मिक कथनों को क्यों न संज्ञानात्मक माना जाए, उन्हें असंज्ञानात्मक क्यों कहा जाए, फिर भी धार्मिक कथनों में धार्मिक ज्ञान एक विषय होता है। और धार्मिक ज्ञान में चूंकि विश्व के सभी धर्मों का विश्वास है तथा भाषा के माध्यम से उसकी संप्रेषणीयता में मनुष्य भाग लेता है, अतः कुछ लोगों का तर्क है कि ईश्वरवादी कथनों को संज्ञानात्मक माना जा सकता है। अब शीर्षक है क्या धार्मिक कथन संज्ञानात्मक है। इसके लिए निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। इसमें पहला है सत्ता का बोध होना। तर्कमूलक भाववादी धार्मिक कथनों को संवेग प्रेरक या भाव प्रेरक कहते हैं। जैसे ईश्वर प्रेम है कहने पर लोगों में आनंद का भाव जागता है, इससे किसी सत्ता का बोध नहीं होता। परंतु जब धार्मिक व्यक्ति आपस में बातचीत करता है और कहता है ईश्वर बड़ा दयावान है और कष्ट के दिनों में बड़ी सहायता करता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक दूसरे को सूचना दे रहा है। जैसे कि हम किसी व्यक्ति के विषय में सूचना देते हैं, अतः ईश्वर के विषय में धार्मिकों की बातचीत संज्ञानात्मक सिद्ध होती है और यह भाषा धार्मिक व्यक्ति समझता भी है। अतः धार्मिक कथन मात्र भाव प्रेरक ही नहीं वरन सत्ताबोधक प्रतीत होता है। अतः धार्मिक कथन संज्ञानात्मक होते हैं। धार्मिक कथनों का अर्थ होता है, बिंदु दूसरा है, धार्मिक कथन अभाव सूचक नहीं भाव सूचक होते हैं। धार्मिक व्यक्ति ईश्वर के संबंध में भाव सूचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे ईश्वर सृष्टि का रचयिता है और उसके अनुरूप व्यवहार भी करते हैं, इससे ईश्वर के विषयक ज्ञान का बोध कराया जाता है। अतः ऐसे वाक्य संज्ञानात्मक हैं। बिंदु तीसरा है, ईश्वर की सत्यता और असत्यता। एकेश्वरवादी केवल एक ईश्वर को ही सत्य सिद्ध करते हैं तथा अन्य देवी देवताओं का खंडन करते हैं, या अनेक धर्मों वाले अपने ही धर्म के भगवान को सत्य मानते हैं और दूसरे धर्म के भगवान को असत्य सिद्ध करते हैं। पृष्ठ संख्या 253। धार्मिकों के इस सत्य असत्य शब्दों को प्रयुक्त करने से प्रतीत होता है कि धार्मिक कथन संज्ञानात्मक होते हैं। यदि ऐसा न होता तो धार्मिक लोग सत्य असत्य मूल्यों को प्रयोग में न ले आते। बिंदु चौथा है, संज्ञानात्मक वाक्य। ईश्वरवादी या धार्मिक व्यक्ति ईश्वर के संबंध में ऐसे प्रश्न करता है जिसका उत्तर संज्ञानात्मक वाक्यों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जैसे क्या ईश्वर न्यायी है, क्या ईश्वर भक्तों की पुकार सुनता है आदि। अतः धार्मिक कथन आदि संज्ञानात्मक न होते तो इस प्रकार के प्रश्न न किए जाते। बिंदु पांचवा है, धार्मिक कथन ईश्वर के गुण का बोध कराते हैं। जब धार्मिक व्यक्ति कहता है मैं जानता हूँ कि ईश्वर दोनों पर दया करता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर भक्त वत्सल है आदि, तो वह जानना या ज्ञान होना आदि संज्ञानात्मक शब्द का प्रयोग करता है। इससे स्पष्ट है कि ऐसे कथन केवल भाव तेजक ही नहीं वरन इनसे ईश्वर के गुणों का भी बोध होता है। अतः धार्मिक कथन संज्ञानात्मक हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक का यह प्रश्न विवादास्पद है। यद्यपि ऊपर से धार्मिक कथन संज्ञानात्मक लगते हैं, परंतु केवल ऊपर से देखकर ही हम इन कथनों को संज्ञानात्मक नहीं कह सकते। अनेक ईश्वरवादी धार्मिक कथनों को संज्ञानात्मक रूप में नहीं स्वीकार करते। कुछ धर्म दार्शनिक तो धार्मिक कथनों को असंज्ञानात्मक ही मानते हैं। यहाँ ज्ञातव्य है कि धार्मिक कथनों को असंज्ञानात्मक कहने का अर्थ यह नहीं है कि वे निरर्थक हैं। तर्कमूलक भाववादी इसे केवल भाव प्रेरक मानकर या निरर्थक मानकर नहीं टाल सकते। इसका प्रत्याख्यान अनेक दार्शनिक कर चुके हैं। धार्मिक कथनों का या भाषा का अपना वैशिष्ट्य होता है। उसे समझ लेने के पश्चात हमें इसका ज्ञान होने में सुलभता हो जाती है कि धार्मिक कथन निरर्थक नहीं है। अब अगला शीर्षक है, क्या धार्मिक कथन सार्थक है? इसमें पहला बिंदु अ है, धार्मिक कथनों की विशिष्टता एवं भाषा के अन्य कथनों या वाक्यों से उसकी भिन्नता। हम सामान्य जीवन में अनेक क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु धार्मिक भाषा का अपना विशिष्ट रूप और स्थान है। इसकी अर्थपूर्णता में भी विशिष्टता है। धर्म के विभिन्न आयाम हैं, सामाजिक, दार्शनिक, नैतिक और आध्यात्मिक। इनमें आध्यात्मिक पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम धर्म के संबंध में भिन्न भिन्न रीतियों से सोच सकते हैं, परंतु अंततो गत्वा धर्म निसंदेह परम सत्ता की अनुभूति से संबंधित है। लोग सोच सकते हैं कि परम सत्ता जो दृष्टिगोचर नहीं है उसकी बात करना पागलपन है, किंतु वास्तविकता यह है कि अनुभवात्मक पदार्थ भी अपनी वास्तविक प्रकृति बाह्य रूप से प्रकट नहीं करते। जैसे जल को हम देखते हैं, परंतु वास्तव में यह क्या है? वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार यह कई गैसों का संयोग है। दो अंश हाइड्रोजन तथा एक अंश ऑक्सीजन अर्थात H2O मिलकर जल बनता है। क्या जल के संबंध में हम केवल इस वैज्ञानिक विश्लेषण की ही वार्ता पर विचार करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जल की वास्तविकता प्रकृति हमारी प्यास तृप्त करती है, जो विभिन्न गैसों के सम्मिश्रण से संभव नहीं है। इसी प्रकार जीवन के रूप में हमें जो दिखाई दे रहा है अनुभवात्मक न होते हुए भी वास्तविकता से परिपूर्ण है। जिस प्रकार अनुभवात्मक जल में प्यास तृप्ति का गुण दृष्टिगोचर नहीं है, उसी प्रकार परम सत्ता अनुभवात्मक जगत में दृष्टिगोचर नहीं है। पृष्ठ संख्या 254। यदि हम उक्त कथन से सहमत हैं तो सिद्ध है कि धार्मिक कथनों की अर्थपूर्णता भी विशिष्ट प्रकार की होगी। धार्मिक कथन की भाषा वाक्य और अर्थपूर्णता सामान्य भाषा और उसकी अर्थपूर्णता से अवश्य भिन्न होगी, परंतु उन्हें निरर्थक नहीं कह सकते। अब बिंदु ब है, धार्मिक समवाक्य और विश्लेषणात्मक वाक्य। विश्लेषणात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिसके विधेय में उद्देश्य का केवल विश्लेषण होता है। जैसे लाल मेज लाल है, इसमें लाल विधेय उद्देश्य लाल मेज की धारणा में निहित है। विश्लेषणात्मक वाक्य आवश्यक एवं अनिवार्य होते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्यों में विधेय को उद्देश्य के प्रयोग में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करते हैं तो आत्मविरोध हो जाएगा। तार्किक एवं गणितीय वाक्य विश्लेषणात्मक ही होते हैं। धार्मिक समवाक्यों में अनिवार्यता होते हुए भी इन्हें विश्लेषणात्मक वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विश्लेषणात्मक वाक्य की सत्यता तथा असत्यता तो उनमें प्रयुक्त पदों की परिभाषा पर निर्भर होती है, परंतु धार्मिक समवाक्यों में ऐसा नहीं है। जैसे 2 और 2 = 4 आदि पदों का अर्थ मालूम रहे तो हमें कहना ही होगा कि 2 और 2 = 4 होते हैं। इनमें अनिवार्यता पदों के अर्थों में ही निहित है, परंतु ईश्वर प्रेम है। इस धार्मिक समवाक की व्याख्या इसमें प्रयुक्त पदों की परिभाषा से नहीं की जा सकती। यहाँ आवश्यक है कि ईश्वर की प्रेममयता में विश्वास हो। सारांश यह है कि विश्लेषणात्मक वाक्य की अनिवार्यता उसमें प्रयुक्त पदों पर निर्भर है, जबकि धार्मिक समवाक्यों की अनिवार्यता मनोवैज्ञानिक है। इसका अर्थ इसके प्रत्यय पर निर्भर करता है। धार्मिक कथनों को निरर्थक नहीं कह सकते। बिंदु स है, धार्मिक समवाक्य एवं संश्लेषणात्मक वाक्य। संश्लेषणात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिसके विधेय में उद्देश्य के संबंध में कोई नई बात कही जाती है। जैसे कमरे में मेज है, इसमें विश्लेषणात्मक वाक्यों की तरह अनिवार्यता तो नहीं होती, परंतु इनका सत्य इंद्रिय अनुभव पर निर्भर करता है। सामान्य दैनिक जीवन में हम इस प्रकार के कथनों में अविश्वास नहीं कर सकते, परंतु इसमें अनिवार्यता इसलिए नहीं है कि हम यह कल्पना भी कर सकते हैं कि कमरे में मेज नहीं है, परंतु 2 × 2 = 4 होता है। इसमें हम 5 होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अनिवार्य रूप से 2 × 2 = 4 होता है। संश्लेषणात्मक वाक्यों के विधेय चूंकि अनुभव से प्राप्त होता है, इसलिए इसमें ज्ञान बुद्धि होती है। इसीलिए कांट ने इससे नए ज्ञान की उत्पत्ति होने की बात मानी है। सारांश यह है कि संश्लेषणात्मक वाक्य इंद्रिय अनुभव पर आधारित होते हैं, अतः सत्यापनीय होते हैं। इसके विपरीत धार्मिक वाक्य इंद्रिय अनुभूति पर आधारित नहीं होते, इसलिए इनको सत्यापनीय नहीं कहा जा सकता। कमरे में मेज है की तरह ईश्वर सर्वव्यापक है वाक्य को सत्यापित नहीं किया जा सकता। यहाँ मार्टिन बूबर का यह कथन उद्धृत किया जा सकता है कि आनुभाविक वाक्यों में तो मैं, यह या आई इट का संबंध होता है, अर्थात अनुभवकर्ता और वस्तु की सूचना मिलती है, परंतु धार्मिक समवाक्यों में मैं, वह या आई दैट का संबंध होता है, अर्थात इसमें विश्वास के आधार पर विश्वासकर्ता अपना संबंध परम सत्ता से प्रकट करता है। इस कथन में उसका संपूर्ण व्यक्तित्व सन्निहित है। इसमें विश्वासकर्ता का व्यक्तित्व बाहरी मन को प्रकट नहीं करता, अतः धार्मिक कथनों को सार्थक कहा जा सकता है। बिंदु द है धार्मिक समवाक्य और नैतिक वाक्य। नैतिक वाक्य नियोजक या प्रेस्क्रिप्टिव होते हैं, जैसे झूठ मत बोलो। इस कथन से व्यवहार के किसी नियम का ज्ञान होता है, परंतु धार्मिक कथनों में इस तरह के किसी अर्थ का बोध नहीं होता। इसमें तो विश्वासकर्ता के विश्वास की ही अव्यक्ति है, अतः स्पष्ट है कि धार्मिक वाक्य न तो विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक और न ही नियोजक होते हैं, परंतु धार्मिक कथन निरर्थक नहीं है। पृष्ठ संख्या 255। बिंदु यह है धार्मिक समवाक्य उत्प्रेरक कहे जा सकते हैं। धार्मिक समवाक्यों में चूंकि हमारे अंदर धार्मिक अनुभूति की उत्प्रेरणा मिलती है, इसलिए इसे उत्प्रेरक या इवोकेटिव कहा जा सकता है। धार्मिक अनुभूति साधारण एवं सामान्य अनुभूति से भिन्न होती है। इसकी प्रमुख विशेषता आटो के शब्दों में स्वजनित प्रतिक्रिया है। इससे हमारे अंदर ऐसी अभिवृत्ति उत्पन्न होती है कि उसके कारण हम विशेष ढंग से सोचने और कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे हम जीवन की शुचिता की ओर या संपूर्णता की ओर अग्रसर होते हैं। इसी को जूर डिग ने संप्रत्यात्मक अवृत्ति या कन्विक्शनल एटीट्यूड या इयन रामजे ने उद्घोषण या डिसर्नमेंट कहा है। इसी से हमारे अंदर सत्ता के प्रति या समस्त विश्व के समक्ष आत्मसमर्पण की भावना जगती है। हमारे अंदर जीवन और जगत के प्रति एक नए दृष्टिकोण का उदय होता है। हम अपने जीवन को भिन्न ढंग से ढालने का उपक्रम करते हैं। यह तथ्य तो विश्व के अनेक संतों के जीवन से प्राप्त होता है। उनके प्रारंभिक जीवन और बाद के पवित्र जीवन से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि इस अनुभूति में क्या शक्ति है और उसका कैसा कार्य तथा महत्व है। इसी आधार पर धार्मिक कथनों की अर्थपूर्णता भी सिद्ध होती है। इतना अवश्य है कि धार्मिक भाषा की सार्थकता नैतिक वैज्ञानिक तार्किक और गणितीय भाषा से भिन्न है। धार्मिक भाषा को निरर्थक नहीं कह सकते। बिंदु र है धार्मिक भाषा का प्रयोग। धार्मिक भाषा को निरर्थक कहने का कारण संदर्भ विशेष का ज्ञान होना है। विभिन्न विषयों का अपना अलग क्षेत्र होता है, उसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ही उसका अर्थ समझा जा सकता है, अन्यत्र उसका प्रयोग निरर्थक तो सिद्ध होगा ही। जैसा अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र आदि विषयों के शब्दों का प्रयोग उनके क्षेत्र विशेष के संदर्भ में ही सार्थक हो सकता है, काव्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण तथा शक्तिदायक अथवा आनंददायक तब सिद्ध होता है जबकि उसका संदर्भ विशेष में अर्थ लिया जाता है। इसीलिए तो काव्य में शब्द शक्ति का महत्व है। धार्मिक भाषा का भी अपना क्षेत्र और विशेष प्रयोग विधि है। उसे जानने पर ही धार्मिक भाषा का स्वरूप स्पष्ट होता है। इसमें प्रयुक्त शब्द वैसे ही सामान्य तथा सरल होते हैं जैसा कि हम सामान्य जीवन में भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। परंतु जब हम उन शब्दों के उद्देश्य और अर्थ पर ध्यान देते हैं कि उनका प्रयोग सामान्य जीवन में प्रयुक्त किए गए शब्दों से भिन्न और विशेष अर्थ में होता है, जैसे ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, इसमें पुत्र का प्रयोग उस सामान्य अर्थ में नहीं किया गया है जिस अर्थ में मोहन राकेश का पुत्र है। इस वाक्य में पुत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार जब यह कहा जाता है कि यह ईश्वर का आदेश है, तो यहाँ आदेश का वह अर्थ नहीं है जो एक शरीरधारी खाते पीते अधिकारी द्वारा अपने अधीन रहने वाले कर्मचारी को दिया जाता है। यहाँ आदेश का प्रयोग सामान्य अर्थ में न करके विशेष अर्थ में ही किया गया है। योग शब्द गणित में भी प्रयुक्त होता है और धार्मिक भाषा में भी, परंतु दोनों क्षेत्रों में इसका अर्थ भिन्न भिन्न प्रसंगों में भिन्न भिन्न होता है। सारांश यह है कि धार्मिक भाषा का अर्थ प्रसंग विशेष में ही ग्रहण किया जा सकता है और ऐसी ही दशा में उसकी अर्थवत्ता तथा सार्थकता सिद्ध होती है, उन्हें निरर्थक नहीं कह सकते। पृष्ठ संख्या 256। अब अगला शीर्षक है धार्मिक भाषा की विशेषताएं या लक्षण। धार्मिक भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं या लक्षण होते हैं जिनसे उसके स्वरूप को और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। धार्मिक भाषा अधिकांश रूप में सादृश्य अनुमानिक, प्रतीकात्मक और विरोधपूर्ण होती है। कारण स्पष्ट है कि सामान्य जीवन की भाषा को तथ्यकीय ढंग से प्रयुक्त होती है, परंतु धार्मिक भाषा का प्रयोग अलौकिक तथा अतींद्रिय सत्ता के लिए किया जाता है। इसीलिए उसके संबंध में उपमा, प्रतीक और विरोधपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए धार्मिक भाषा में ये सभी विशेषताएं होती हैं। इसमें पहला बिंदु है धार्मिक भाषा सादृश्य अनुमानिक होती है। धार्मिक प्रकथनों में सादृश्य अनुमान के प्रयोग की चर्चा थॉमस एक्विनस की रचनाओं में मिलती है। चूंकि ईश्वर विश्वातीत सत्ता है, निर्विकार शुद्ध सत्ता है, इसलिए एक्विनस के अनुसार ईश्वर संबंधी कथन में सादृश्य अनुमान का प्रयोग किया जाता है। कारण यह है कि साधारण दृष्टिकोण से ईश्वर के संबंध में कुछ कहने में हम असमर्थ हैं। एक्विनस के अनुसार जब हम किसी एक ही शब्द को असीम ईश्वर तथा ससीम मनुष्य के लिए प्रयुक्त करते हैं तो उस शब्द का अर्थ दोनों के लिए एक ही नहीं रहता। जैसे जब हम कहते हैं कि ईश्वर दयावान है, तो ईश्वरीय दया मानवीय दया से नितांत भिन्न होती है। यहाँ मानव और ईश्वर की दया के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए सादृश्य अनुमानिक प्रकथनों का प्रयोग किया गया है। यहाँ सादृश्य अनुमानिक कथन को इसीलिए भी प्रयुक्त किया गया है कि ईश्वर और मानव की दया में अवश्य ही कुछ संबंध है, परंतु दोनों अभिन्न हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता, यहाँ दया शब्द दोनों ही स्थानों में प्रयुक्त हुआ है, परंतु दोनों ही स्थितियों में वे न तो अनेकार्थक ही हैं न एकार्थक ही। प्रश्न होता है कि तब वे क्या हैं? एक्विनस के अनुसार वे सादृश्य अनुमानिक हैं। ईश्वर संबंधी कथनों में हम इस प्रकार के सादृश्य का सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारी भाषा ईश्वर के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ है। बिंदु दूसरा है, धार्मिक भाषा प्रतीकात्मक होती है। इस मत के प्रतिपादक पाल तिलिक हैं। धार्मिक भाषा का विशिष्ट रूप में सर्वेक्षण करने के पश्चात तिलिक महोदय ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि धार्मिक भाषा प्रतीकात्मक होती है। जब यह प्रश्न होता है कि परम सत्ता अनुभवात्मक जगत में दृष्टिगोचर नहीं होती, तो धर्म के संबंध में हम किसी पद्धति से अपनी बात कर सकते हैं। पाल तलिख ने इस संबंध में कहा है कि परम सत्ता के विषय में अव्यक्ति में प्रतीकात्मकता होनी चाहिए, क्योंकि परम सत्ता की अव्यक्ति मात्र प्रतीकात्मक भाषा द्वारा ही संभव है। अतः स्पष्ट है कि धर्म की भाषा प्रत्यक्ष न होकर प्रतीकात्मक ही होती है। धर्म की भाषा के प्रतीकात्मक होने के कारण यह है कि हमारे पास परम सत्ता को ज्ञात करने का कोई प्रत्यक्ष साधन इस प्रकार नहीं है जिस प्रकार से भौतिक जगत की वस्तुओं को जानते हैं। केवल तथ्य को ही प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है, सत्ता को नहीं। सत्ता की मात्र अनुभूति की जा सकती है। सत्ता के लिए हम लोग लोकोत्तर या ट्रांसेंडेंटल तथा तथ्यों के लिए लौकिक या इंपिरिकल शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तिलिख के विचारों का विश्लेषण धार्मिक भाषा के विवेचन को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अतः प्रतीक का अभिप्राय स्पष्ट करना आवश्यक है। प्रतीक प्रत्यय की अव्यक्ति है। तिलिख ने प्रतीक को स्पष्ट करने के लिए इसका चिन्ह से विभेद किया है, क्योंकि सामान्य व्यवहार में लोग चिन्ह और प्रतीक का एक ही अर्थ लगाते हैं। पृष्ठ संख्या 257। तिलिख के अनुसार चिन्ह किसी व्यवस्था की ओर संकेत करता है। सड़क के चौराहे पर लाल प्रकाश वाहनों को रुकने का संकेत करता है। यद्यपि लाल प्रकाश और वाहनों के रुकने में कोई संबंध नहीं है, किंतु प्रचलन और व्यवस्था के अनुसार दोनों का यह संबंध तब तक बना रहेगा जब तक प्रचलन और व्यवस्था का अस्तित्व रहेगा। इससे यह स्पष्ट है कि चिन्ह केवल प्रचलन की देन है, जबकि प्रतीक प्रचलन से संबंधित नहीं होते। तिलिख के अनुसार प्रतीक उस सत्य के अंग हैं जिसका उनके द्वारा बोध कराया जाता है। इसके अनुसार प्रतीक के कई लक्षण हैं। इसमें पहला है, प्रतीक उस वस्तु का अंग है जिसकी ओर संकेत करता है। जैसे ध्वज राष्ट्र की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ध्वज पर प्रहार राष्ट्र की महिमा पर प्रहार माना जाना है। दूसरा है, तिलिह के अनुसार प्रतीक सत्य को प्रकट करने का माध्यम है। तीसरा है, प्रतीक केवल सत्य के आयात ही हमारे लिए उन्मुक्त नहीं करते हैं, वरन हमारी आत्मा के उन तत्वों और आयामों को भी उन्मुक्त करते हैं जिनका सत्य से तादात्म्य होता है। बिंदु चौथा है, प्रतीकों का कृत्रिम निर्माण नहीं किया जा सकता, वे व्यक्ति या सामूहिक अवचेतन की उपज हैं। पांचवा है, प्रतीकों का अनुसंधान नहीं किया जा सकता, वे सजीव की भांति बढ़ते तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब तीसरी विशेषता है, धार्मिक भाषा में प्रतीकों की प्रयोग विधि। चूंकि परम सत्ता निरुपाधिक और अतींद्रिय है, इसलिए इसके विषय में किसी भी प्रत्यय को शब्दशः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तिलिह के अनुसार जिन प्रत्ययों तथा शब्दों को हम धार्मिक भाषा में पर्याप्त मान सकते हैं, उन्हें प्रतीक ही कहा जा सकता है। अब प्रश्न होता है कि धार्मिक भाषा की प्रतीकात्मकता में किसी का विश्वास कैसे हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि समस्त धार्मिक कथन ईश्वरीय कथन है या समस्त धार्मिक कथन ईश्वर से संबंधित होते हैं। सारांश यह है कि धार्मिक भाषा के माध्यम से हम ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति करते हैं। जब हम ब्रह्म को जगत का कारण कहते हैं तो इसका एकमात्र उद्देश्य ब्रह्म के गुणों की अभिव्यक्ति है। यहाँ तक कि ईश्वर, ब्रह्म, अल्लाह आदि शब्द भी परम सत्ता के प्रतीक ही हैं। अतः तिलिह का यह कथन कि आस्था की भाषा प्रतीकों की भाषा है, अक्षरशः सत्य है। विभिन्न धर्मों में जो पौराणिक कथाएं मिलती हैं, उन्हें प्रतीकों की व्यवस्था कहा जा सकता है। इन कथाओं के आधार पर व्यक्ति उस अतींद्रिय सत्ता के साथ अपने को एकाकार कर लेता है। ईसा, क्रूस, बुद्ध, चक्र, यज्ञ आदि प्रतीकों के माध्यम से मनुष्य अपना संबंध परम सत्ता से जोड़ लेता है। इन प्रतीकों का गूढ़ अर्थ होता है। उसके साथ एकाकार होने पर मनुष्य में शक्ति संचार और आनंद का अनुभव होता है। निष्कर्ष यह है कि इन प्रतीकों के आधार पर मनुष्य निरुपाधिक एवं अतींद्रिय सत्ता में भागी हो जाता है और उसका भान भी करता है। यही धार्मिक भाषा में प्रतीकों का कार्य और महत्व है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म की भाषा प्रतीकों की भाषा है। अब अगला शीर्षक है, धार्मिक प्रतीकों के कार्य। धार्मिक भाषा को असंज्ञानात्मक मान लेने पर धार्मिक प्रतीकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। जॉन हिक ने इसके संबंध में रेंडेल तथा ब्रेथवेट के विचारों का सुंदर विवेचन अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में किया है। रेंडेल के अनुसार धार्मिक प्रतीकों के चार कार्य हैं। इसमें बिंदु अ है, वे भावनाओं को जागृत कर मनुष्य के लिए उद्वेलित करते हैं तथा मनुष्य का उचित के प्रति जो विश्वास है उसे सबलता प्रदान करते हैं। ब है वे सहकारी कृत्यों को प्रेरित करते हैं तथा सामान्य अनुक्रिया के माध्यम से सांप्रदायिक बंधन को दृढ़ करते हैं। पृष्ठ संख्या 258 बिंदु स है वे अनुभूति के ऐसे गुणों को संचारित करने में सक्षम होते हैं जिन्हें सामान्य शाब्दिक भाषा द्वारा अव्यक्त करना संभव नहीं। बिंदु द है वे विश्व के दैवी पक्ष के संबंध में मानव अनुभूति को जागृत पोषित और स्पष्ट करते हैं। धार्मिक प्रतीकों के इस कार्य का उल्लेख करते हुए रेंडल सौंदर्यात्मक सादृश्य प्रस्तुत करते हैं। चित्रकार संगीतज्ञ तथा कवि की रचनाओं से हमें उपदेश मिलता है कि हम कैसे अपने नेत्रों कानों तथा मस्तिष्क एवं भावों को बृहद शक्ति तथा कौशल से प्रयोग में ला सकते हैं। यह हमें प्रदर्शित करते हैं कि वर्तमान जगत में हम कैसे असंदिग्ध गुणों का अवलोकन कर सकते हैं, उसमें निहित शक्तियों तथा संभावनाओं का कैसे अनुदर्शन कर सकते हैं। इससे भी आगे हमें वे ऐसे गुणों का अवलोकन करने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं जो मानवीय आत्मा के संसर्ग से विश्व हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। वे हम में तथा हमारे समक्ष उपस्थित संसार में परिवर्तनों को उपस्थित कर सकते हैं। वे हमें इस संसार में मनुष्य का जीवन कैसा है और कैसा हो सकता है जानने का उपदेश देते हैं। उनमें हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक दशाओं और अपनी निकटवर्ती वस्तुओं से क्या क्या परिणाम निकाल सकता है। वे विश्व के धार्मिक आयामों को भली भांति देखने तथा अनुभव करने एवं आध्यात्मिक विश्व को समझने की क्षमता उत्पन्न करते हैं। वे हमें विश्व आत्मा को ढूंढने का मार्ग बतलाते हैं तथा ईश्वर का दर्शन कराते हैं। रेंडल की भांति ब्रेथवेट ने भी धार्मिक भाषा की प्रतीकात्मकता के आधार पर बतलाया है कि धार्मिक अनुकथन का कार्य नैतिक होता है। धार्मिक भाषा क्रिया की नीति स्पष्ट करती है। उनके अनुसार जब कोई मनुष्य यह संकल्प कर लेता है कि उसे ऐसा करना चाहिए तो वह अपने संकल्प की घोषणा अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुकूल करता है। अतः ब्रेथवेट यह प्रकट करता है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर को प्रेम का समानार्थी मानता है तो वह जीवन में प्रेम का अनुयायी है। बिंदु चौथा है धार्मिक भाषा में विरोधाभास। धार्मिक भाषा की यह भी विशेषता है कि उसमें विरोधाभास का प्रयोग मिलता है, परंतु यह सामान्य विरोध जैसा नहीं होता। विश्व के धार्मिक ग्रंथों तथा संतों की वाणियों में विरोधी अनुकथन देखने को मिलते हैं। बाइबिल में ईसा के कथनों में, उपनिषदों में तथा कबीर और अन्य संतों की वाणियों में ऐसे अनेक अनुकथन मिलते हैं। धार्मिक व्यक्ति इन अनुकथनों का अर्थ ग्रहण करता है। धार्मिक पुरुष उस अनन्य सत्ता को भाषा में प्रकट करने के लिए विरोधी उक्तियों का सहारा लेता है, परंतु इनका एक विशिष्ट अर्थ होता है। ईसा के इन कथनों का कि जो प्राण बचाएगा वह उसे खोएगा और जो प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसमें वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आदि का एक विशिष्ट अर्थ एक विशिष्ट प्रसंग में सार गर्भित है। इसी तरह उपनिषदों में त्याग से भोग या त्यक्तेन भुंजिथा और वह अणु से भी अणु तथा महान से भी महान है, या अड़ोरण्यान महतो महिमान, या वह निकट से निकट और दूर से भी दूर है, आदि कथन मिलते हैं जिनका अर्थ धर्म में बड़ा ही सार्थक प्रयोग माना जाता है। किर्केगार्ड जो एक अस्तित्ववादी दार्शनिक हैं, इन विरोधाभासी कथनों को औचित्य और महत्व प्रदान करते हैं। किर्केगार्ड विरोधाभासी कथनों को चिंतकों और धार्मिक व्यक्तियों के उत्कंठाओं का स्रोत मानते हैं। पृष्ठ संख्या 259। धार्मिक भाषा की समस्या पर कतिपय पाश्चात्य विद्वानों के उपयुक्त विचारों का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि धार्मिक भाषा सामान्य भाषा से भिन्न होती है और उसका अपना एक विशिष्ट स्वरूप होता है। धार्मिक भाषा प्रतीकात्मक होती है, यह यथार्थ सुनिश्चित और संज्ञानात्मक नहीं होती, क्योंकि इसके विषय अनुभवात्मक जगत के विषय और तथ्य नहीं है। मैक ग्रीगर ने ठीक ही कहा है कि धार्मिक भाषा अनन्य है, क्योंकि इसका विषय भी अनन्य या सत्ता है। हम इस निष्कर्ष पर भी पहुँचते हैं कि यदि धार्मिक भाषा संज्ञानात्मक नहीं है तो उसे असंज्ञानात्मक कह सकते हैं। यहाँ डब्ल्यू एम अर्बन द्वारा धार्मिक भाषा के वर्गीकरण को स्वीकार करना चाहिए, जिन्होंने इसे दो रूपों में वर्गीकृत किया है। अब अगला शीर्षक है धार्मिक भाषा के प्रकार। अर्बन ने धार्मिक भाषा को असंज्ञानात्मक स्वीकार करते हुए इसे दो रूपों में इस प्रकार बांटा है। पहला है गीतात्मक भाषा, दूसरा है नाटकीय भाषा। पहला, गीतात्मक भाषा का परिचय प्रार्थना गीतों और स्तुतियों में मिलता है। अन्य शब्दों में धर्म की भाषा संत या भक्त की भाषा है, जिससे वह अपने उपास्य को संबोधित करता है। इसे संवेगात्मक भाषा भी कहा जा सकता है। यहाँ अर्बन यह भी मानते हैं कि धर्म की भाषा कविता की भाषा नहीं है। धर्म की भाषा भावनाओं को जागृत करती है और काव्य की भाषा पदार्थों को भी जागृत करती है। आत्मा, संत, देवदूत एवं स्वयं ईश्वर का आह्वान धर्म का मूल तत्व है और यही धर्म को काव्य से पृथक करता है। काव्य जब ईश्वरीय आह्वान करता है तो वह धर्म के प्रांत में प्रवेश करके धर्म काव्य बन जाता है। दूसरा है नाटकीय भाषा, पुराणों और कर्मकांडों में मिलती है। पुराण हमारे आध्यात्मिक जीवन की सहज एवं वास्तविक अभिव्यक्ति है। ई ओ जेम्स के अनुसार पुराण की भूमिका समाज को एकबद्धता एवं स्थिरता प्रदान करना है। समूह मनोविज्ञान तथा नेता या समुदाय के प्रति भक्ति का आधार लेते हुए यह समाज में एक सांस्कृतिक एवं समाज शास्त्रीय अधिपत्र की भूमिका संपन्न करता है। जब कभी धार्मिक पुराण किसी उद्देश्य के संदर्भ में होते हैं तो उनका स्वरूप धार्मिक हो जाता है। धार्मिक स्तुतियां एवं प्रार्थना गीत केवल विषय को ही अभिमंत्रित नहीं करते वरन उसमें गुणों का भी आरोपण करते हैं। विकसित धर्मों में धार्मिक पुराण एवं नाटक इन विषयों के कार्यों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा स्पष्ट या अंतर्निहित रूप में वे देवी शक्तियों का इस संसार तथा मानव जीवन से संबंध स्थापित करते हैं। इन्हीं निश्चयोक्तियों से ही धर्मशास्त्र का निर्माण हुआ है। शीर्षक है निष्कर्ष। धार्मिक भाषा का कार्य मूल्यांकन अथवा झूठ सच का विवेचन करना नहीं है। धर्म की भाषा भावना या अनुभूति की भाषा है। कथन के रूप में इसका सत्यीकरण नहीं किया जा सकता। तर्क की भाषा की भांति धर्म की भाषा के समक्ष कोई समस्या नहीं होती। धर्म में हम तर्कों का प्रयोग करते हैं किंतु तर्क का कथनात्मक रूप में विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि कथनात्मक भाषा या तार्किक भाषा साधारण भाषा पर आधारित होती है। पृष्ठ संख्या 260। धर्म की भाषा मस्तिष्क की भाषा न होकर हृदय की भाषा होती है। इसका लगाव व्यक्ति और उसके जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंधों से होता है। धार्मिक भाषा में प्रयुक्त किए गए शब्द सामान्य भाषा के हो सकते हैं परंतु उनका अर्थ किसी प्रसंग विशेष से ही समझा जा सकता है। जो व्यक्ति इनके संदर्भ और परिप्रेक्ष्य से अनभिज्ञ है उसके लिए यह निरर्थक मूल्यहीन लग सकती है परंतु जो इसके वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए यह केवल अर्थपूर्ण तथा सारगर्भित ही नहीं अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो उसके जीवन का परिचालन ही नहीं करती वरन गंतव्य तक पहुँचाने में सहाय होती है। अध्याय 15 समाप्त।